क्या था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी तहद्दे नजर एक बयाबान सा क्यों है, इस कहानी का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना, सामने वाली बर्थ पर बैठा व्यक्ति मुझे लगातार देखे जा रहा था। कभी मेरी कभी पत्नी की नजर बचाकर उसका घूरना जारी था। कुछ देर बाद उनकी पत्नी उठकर शायद टॉयलेट तक गई थी, तब उन्होंने गला साफ किया और किंचित आगे झुककर कहा, एक्सक्यूज मी, आप मिस जौहरी हैं, मिस रेखा जौहरी? आप मुझे कैसे जानते हैं? आपको शायद याद नहीं है, हम लोग एमए में साथ थे। मैं अब एक एक नाम याद करने की कोशिश कर रही थी। आपके साथ एक तो राजीव दुबे थे, आनंद भार्गव, वसीम अहमद, सुयश बागची, बस इतने ही नाम याद आ रहे हैं। इतने नाम याद आ गए यही बहुत है। आप लोग तो चार ही थी, हम तो 10 थे। आपकी बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? नीलिमा की तो तुरंत ही शादी हो गई थी और वह पति के साथ यूके चली गई थी। रूबी शायद दुबई में है। चित्रा से एक आध बार मुलाकात हुई है, वह चेन्नई में है, हस्बैंड मशहूर कार्डियक सर्जन है। और आप? मैं एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। मिस्टर की 7-8 साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बेटा यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। खाने के बाद मैंने तुरंत सोने की तैयारी कर ली। आज ये व्यक्ति पत्नी के सामने मेरे साथ बड़े आदर से पेश आ रहा है, पर कॉलेज के जमाने में इन लोगों का पूरा ग्रुप मुझे किस हे दृष्टि से देखता था, यह मैं भूली नहीं हूं। मेरी शादी को लेकर शुरू से ही सब लोग बहुत चिंतित थे। पति देव से ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया था और वे ड्यूटी पर लौट गए। वे तीज पर नहीं आए थे, पर जब करवा चौथ पर भी नहीं आए तो पापा का माथा ठनका। भाई साहब पसोपेश में पड़ गए, बोले, पर जमाई बाबू को तो सच्चाई बतानी पड़ेगी ना। लिहाजा उन्हें फोन किया गया, वे बाकायदा स्टेशन पर लेने पहुंचे। वे हमें लेक प्रोजेक्ट के गेस्ट हाउस में ले गए। उन्होंने कहा कि मेरा घर तो बैचलर्स का अड्डा बना हुआ है, पहले से कुछ आइडिया होता तो मैं कुछ कर लेता, पर 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। भाई साहब कुछ नहीं बोले, बस शाम की गाड़ी से चले ही गए। हनीमून हमारा गेस्ट हाउस के कमरों में ही मन रहा था। 5वें दिन सुबह ये बुरा सा मुंह बनाकर बोले, एक प्रॉब्लम आ गई है, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। माँ बीमार है। आपकी माँ बीमार है और आप नहीं चलेंगे? मेरा तो मुश्किल लगता है, अभी अभी 4 दिन की छुट्टी ले चुका हूं। मैं कुछ देर चुप रही, फिर एकाएक मैंने पूछ लिया, ये आंख मिचोली हम कब तक खेलेंगे? कैसी आंख मिचोली? 6 महीने तक आप अपने लिए स्वतंत्र घर का इंतजाम नहीं कर सके। इस बात पर ना भाई साहब ने यकीन किया था ना मैंने। वे कुछ देर भौचक से मुझे देखते ही रहे, मेरी नजर का सामना करने से कतराते रहे, फिर हिम्मत बटोर कर बोले, सच सुनना चाहती हो ना? इतना साहस है तुम में? मैंने पिछले 6 महीने इतनी घोर मानसिक यंत्रणा झेली है कि अब मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, यह शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, मुझे मजबूर किया गया था। किसने? मेरे पूज्य पिताश्री ने। मुझे तुम जरा भी अच्छी नहीं लगी थी, पर मेरे पिताजी को वह दहेज बहुत अच्छा लगा जो तुम साथ लाने वाली थी। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों की नीचे की धरती धसक गई है और मैं किसी गहरे गर्त में डूबती जा रही हूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को लौटाया और बहुत ही स्पष्ट आवाज में कहा, आपको अपनी रकम मिल गई है ना, मुझसे शादी करने का मुआवजा आप पा ही गए हैं ना, अब एक उपकार और कीजिए, मुझे तुरंत मेरे घर भेज दीजिए। आपके घर से अब मेरा कोई सरोकार नहीं है और घर पहुंचकर मैं तलाक के कागज भिजवा रही हूं, कृपया उन पर दस्तखत करके भिजवा दीजिएगा। तलाक की बात सुनकर सब सकते में आ गए। माँ पापा ने समझाया, हम बात करते हैं, हो सकता है कोई हल निकल आए। अच्छा देखते हैं, वकील से बात करते हैं, पापा ने जैसे मेरा मन रखने के लिए कहा। मुझे बताए बगैर ही उन्होंने मेरे ससुर जी से बात की। वे दौड़े चले आए। अंकिता की शादी तय कर रहा हूं, यह बात फैल गई तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मतलब उन्हें मेरे सुख दुख से कोई सरोकार नहीं था। उनकी इस स्वार्थ परकता ने मेरे तलाक के इरादे पर जैसे मुहर लगा दी। मैं वहां से अकेली नहीं लौटी थी, उनका अंश भी मेरे साथ आया था। मां ने जैसे ही उसे मेरी गोद में दिया, पता नहीं कैसे पल भर में ही वह नन्हा जीव मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बन गया। प्रसूति अवकाश समाप्त होते ही मुझे वास्तवता का भान हुआ। पहले दिन कॉलेज जाते हुए मन रो रहा था। माँ ने कहा, बिटिया समझ लो आज से मैं इसकी माँ हूं, मैं ही इसे पालूंगी, तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। क्षितिज शायद पांचवी में था जब माँ एकाएक चल बसी। अब आगे, मेरी तो खैर माँ थी, मुझे दुख होना स्वाभाविक भी था, पर मेरा बेटा भी नानी की मृत्यु के बाद एकदम कुम्हला सा गया। उसका हंसना बोलना खेलना खाना सब बंद हो गया था, एकदम गुमसुम हो गया था। मुझे तो चिंता ही होने लगी थी। मैंने एक दिन अकेले में पापा से इसका जिक्र किया तो वे बोले, मैं खुद तुमसे यह बात कहने वाला था, तुम्हारी माँ के जाने के बाद घर का वातावरण एकदम बदल गया है, मुझे औरतों के बीच ज्यादा दखलंदाजी करना अच्छा नहीं लगता, पर मैं सोचता हूँ हम क्षितिज को यहाँ से हटा लें। हटा ले मतलब उसे किसी अच्छे रेसिडेंशियल स्कूल में डाल दे, वातावरण बदल जाएगा तो वह संभल जाएगा। इतने से बच्चे को हॉस्टल में रखने की कल्पना मात्र से ही मुझे रोना आ गया। पर पापा शायद ठीक कह रहे थे, मैं इतना डर रही थी, पर बेटा एकदम खुश हो गया। उसे भेजते समय मैं फूट फूट कर रो रही थी और वह मुझे सांत्वना दे रहा था। अब मुझे शनिवार की प्रतीक्षा रहती जब वह घर आता। वे दो दिन मेरे खूब अच्छे से गुजरते, पर धीरे धीरे उसमें भी व्यतिक्रम हो जाता। वह फोन करता, मम्मा इस वीकेंड हमारी पिकनिक जा रही है, प्लीज आप लेने मत आना। तब मेरा पूरा हफ्ता ही खराब हो जाता। एक बार तो उसने मुझे चौंका ही दिया, सातवीं की परीक्षा में उसने तीनों सेक्शंस में टॉप किया था। मैं खुशी खुशी उसे लेने पहुंची थी, उसे खास गिफ्ट देने का प्लान बना रही थी, पर वह बोला, मैं इस बार घर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। मैंने सर से बात कर ली है। मैंने कहा, पागल हो गए हो, गर्मी की छुट्टी में सब अपने घर जाते हैं, सर लोग भी, वे सब लोग अपने घर जाते हैं, मेरा अपना घर कहाँ है? मैं तो स्तब्ध रह गई। बच्चा ये क्या कह रहा है? उसके दिमाग में ये क्या चल रहा है? उसने जैसे मेरे मन की बात जान ली। बोला, हम लोग जहाँ रहते हैं वह निखिलदा नितिनदा का घर है, आशीष मनीष का घर है। हम जबरदस्ती उनके घर में पड़े हुए हैं। मुझे छोटा सा ही सही पर अपना घर चाहिए। मैं समझ गई कि नानी की मृत्यु के बाद शायद यह घर उसे पराया सा लगने लगा है। हो सकता है मेरे भाइयों के बच्चे उसे अपमानित करते हों, मानसिक या शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करते हों। छोटा होने के कारण वह प्रतिकार भी नहीं कर पाता होगा। नानी उसके लिए ढाल समान थी। उनके जाने के बाद वह अपने को असहाय समझता होगा। मैंने उसे कलेजे से लगाकर आश्वासन दिया कि अगली छुट्टी में मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। तब कहीं वह चलने को राजी हुआ। घर आकर मैंने पापा से यह बात कह दी। उन्होंने जरा भी समय नहीं गवाया, फौरन बच्चों की एक मीटिंग बुला ली। कहा, तुम्हारी माँ तो चली गई, मेरा भी अब ठिकाना नहीं है, किसी भी दिन बुलावा आ सकता है। सोचता हूँ अपने सामने ही जो जिसको देना है दे जाऊं, बाद में झंझट ना हो। रेखा को कोई कैश नहीं दूंगा, उसके बदले एक घर खरीद देता हूँ। बाकी गुजारे के लिए उसकी नौकरी है ही। पापा के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। बाद में भाभियां भुनभुनाती रहीं, बिटिया रानी का दान दहेज तो खत्म ही नहीं होता, चलता ही चला जा रहा है। इतने सालों से यहां रह रही हैं, उसका क्या? पता नहीं कैसे पापा ने यह सुन लिया कि उन्हें सुनाने के लिए ही कहा गया हो। गरज कर बोले, बिटिया रानी अपने बाप के घर में बैठकर अपने बाप की कमाई खा रही है, किसी और के बाप की नहीं। अच्छा हुआ कि इस बहाने पता चल गया कि तुम लोगों के मन में कितना जहर है। अब तो अपने मरने से पहले मैं उसका इंतजाम करके ही जाऊंगा। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमें अपना घर मिला था। माँ बेटे की खुशी का अंत नहीं था। कुछ दिनों के लिए पापा भी हमारे साथ आकर रह लिए थे, जिसका बड़ा सहारा मिला था। बस एक ही कसक थी, इस प्रसंग में भाभी लोगों से बेवजह मनमुटाव हो गया था। जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। इतने दिनों तक मैंने अपनी कई इच्छाओं को दफन कर दिया था, वे अब फिर जी उठी थी। मैंने बड़े जतन से अपने घर को अपनी रुचि के मुताबिक सजाना सवारना शुरू कर दिया था। बेटा भी उत्साह से मेरा हाथ बटा रहा था। यह एक ही बेडरूम का छोटा सा फ्लैट था। पापा के विशाल बंगले से उसकी कोई तुलना नहीं थी, पर जैसा भी था ये मेरा अपना घर था। यह अपनेपन का एहसास ही हमें खुशी से भर देता था। बरसों बाद मैंने किचन का रुख किया था। मुझे तो क्षितिज की पसंद नापसंद का पता ही नहीं था। पहले सब माँ देखती थी, बाद में वह हॉस्टल चला गया था। मैंने नए सिरे से अपने को गृहिणी के रूप में ढालना शुरू किया। इतने दिनों तक रसोई में सिर खपाने का ना वक्त था ना शौक, अब उसमें मजा आ रहा था। उसकी पसंद की चीजें बनाकर उसे खिलाने में एक अजीब सा आनंद, अजीब सी तृप्ति मिल रही थी। उसके लिए मैं रेसिपी बुक्स खंगाल रही थी, टीवी से पाक विधियां उतार रही थी। बस एक डर बना रहता था, कहीं वह अपने पापा के बारे में ना पूछ ले। पर उसने कभी नहीं पूछा। परिस्थितियां बच्चों को समझदार बना देती हैं। जिस वर्ष क्षितिज ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की, मेरा स्थानांतरण हो गया। अपना शहर छोड़ने का जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी ही हुई। एक तो प्रिंसिपलशिप मिल रही थी, दूसरे पापा के जाने के बाद शहर से कोई लगाव नहीं रह गया। बेटा भी आईआईटी कानपुर चला गया था। ऐसे समय में यह बदलाव मेरे लिए वरदान ही सिद्ध हुआ। अगले 4 वर्ष मैंने नए काम से तालमेल बिठाने में और नई जगह नए लोगों से परिचित होने में लगा दिए। 4 साल बाद जब वह आईआईटी पास करके लौटा तो मैं नए वातावरण में नए शहर में रच बस चुकी थी। अब मेरे सामने एक ही ध्येय था, क्षितिज का भविष्य। वह एमबीए करना चाहता था, बाहर जाना चाहता था, और अगर आसानी से कोई अच्छा जॉब मिले तो वह भी करना चाहता था। इसी सिलसिले में उसका इधर उधर आना जाना चल रहा था। एक दिन मेरे नाम से एक रजिस्टर्ड लेटर आया। भेजने वाले का नाम पढ़कर तो मैं चकित ही रह गई। इस शख्स से पत्र पाने की आस में मैंने कितनी रातें जागकर गुजारी थी, तब तो मेरी याद नहीं आई। और अब जब मैंने जिंदगी की किताब से उसका पन्ना ही फाड़कर फेंक दिया है तो जनाब पत्र लिख रहे हैं। बड़ी उत्सुकता से मैंने लिफाफा खोला, टप से एक चेक मेरी गोद में आकर गिरा। 5 लाख का चेक था। किस खुशी में, यह सोचते हुए मैंने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। लगा कि मुझे अंगारे पर खड़ा कर दिया गया है। मैडम, तुम तो बड़ी खुददार औरत हुआ करती थी, इतना नीचे कैसे उतर आई? तुम्हारा तो बड़ा अमीर घराना था, रुपयों की बरसात होती थी, फिर मुझ नाचीज के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत आ पड़ी? कहीं ये दहेज की रकम वसूलने का षड्यंत्र तो नहीं है? साफ साफ ही कह देती ना, बेटे को मोहरा बनाने की क्या जरूरत थी? इससे आगे मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। मेरा पूरा शरीर जल रहा था। लगा कि पूरा पत्र पढ़ जाऊंगी तो कोयला ही हो जाऊंगी। दिन भर मैं बेटे की प्रतीक्षा करती रही। वह शाम ढले घर लौटा। मैंने दरवाजे पर ही उसे धर लिया। तुम अपने बाप के पास गए थे? पहले तो वह चौंका, पर तुरंत ही संभल गया। बोला, हाँ गया था। मैंने एक भरपूर तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। क्यों क्यों गए थे वहां? अपना हक मांगने गया था। मैं एक और चाटा रसीद करने वाली थी। बड़ी मुश्किल से अपने पर काबू किया और चीख कर कहा, उसने कौन सा हक अब तक अदा किया है जो तुम उसके सामने भीख मांगने पहुंच गए? तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस आदमी पर थूकना भी नहीं चाहती उस आदमी के सामने तुम कटोरा लेकर खड़े हो गए? कितना रुपया चाहिए था तुम्हें? किस लिए चाहिए था? मैंने कभी किसी चीज के लिए आज तक मना किया है? क्या तुम्हारा मुझ पर से यकीन उठ गया है? मैं तुम्हारे लिए घर बेच देती, गहने बेच देती। एक बार मुझसे कहते तो मुझे इस तरह जलील तो नहीं करते। मुझे खुद ही पता नहीं चला कि कब मैं उसकी छाती में मुंह छुपाकर रोने लगी थी। तुमने मेरी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया है। ऐसे आदमी के सामने मुझे नीचा दिखाया है जिसके नाम से भी मुझे नफरत है। मेरा आत्मसम्मान धूल में मिला दिया है। अब शायद मैं कभी सिर उठाकर खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मैं बोलती जा रही थी, रोती जा रही थी, पर थोड़ी ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी इंसान के सीने पर सिर रखकर रो नहीं रही हूं, बल्कि किसी दीवार पर सिर पटक रही हूं। वह किसी प्रस्तर मूर्ति सा खड़ा था, निस्पंद, निश्चल। मैं एकदम उसे छिटक कर खड़ी हो गई। कहा, सॉरी बेटी, आज पहली बार तुम पर हाथ उठाया है। काश तुम समझ पाते कि मैं। इट्स ओके ममा, उसने सपाट स्वर में कहा। तुम जो इतनी नफरत मन में लिए बैठी थी ना, अच्छा हुआ वह एक साथ ही सतह पर आ गई। नाउ रिलैक्स। कैसी नफरत? तुम मुझे जन्म नहीं देना चाहती थी ना, मैं जबरदस्ती ही इस दुनिया में आ गया हूं। मेरे तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई। ये तुमसे किसने कहा? मामी लोगों ने। अगर इस समय वे दोनों मेरे सामने होती तो मैं उनका मुंह नोच लेती या गला दबा देती, पर इस समय क्रोध में थरथराने की सेवा मैं कुछ ना कर सकी। कब कही थी यह बात भाभी ने? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं कितने दिनों से बच्चा मन में यह ग्रंथि लेकर बैठा होगा। अपनी माँ को लेकर उसके मन में कैसे कैसे विचार आए होंगे। हाँ, मैंने तुम्हें जन्म देना नहीं चाहा था, मैंने अत्यंत संयत स्वर में कहा। मैं नहीं चाहती थी कि बाप के रहते मेरी संतान अनाथों की सी जिंदगी जिए, ननिहाल की देहरी पर आश्रितों का सा जीवन बिताए। उस समय इन्हीं लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया और आज तुम्हारे मन में जहर घोल रही हैं। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, इतना ही कहूंगी कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसका कारण सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम्हारे लिए सांस ले रही हूं मैं, नहीं तो कब के फांसी लगाकर मर गई होती। उसके बाद घर में एक संवादहीनता का दौर शुरू हुआ। घर दो द्वीपों में बट गया। वह सुबह ही निकल जाता, रात गए घर लौटता। मैं खाना लिए बैठी रहती, वह अपनी थाली लेकर कमरे में चला जाता। फिर देखा कि वह धीरे धीरे अपना सामान पैक कर रहा है। एल्यूमिनियम के दो बड़े ट्रंक लाए गए, उसमें उसकी पुस्तकें कपड़े बंद होते गए। कमरा वीरान सा लगने लगा। आखिर एक दिन बेशर्मी से पूछ ही लिया, कहीं जा रहे हो? हाँ, बेंगलोर में एक जॉब मिला है, सोचता हूँ ज्वाइन कर लूँ। मैं पूछने वाली थी कि बाकी योजनाओं का क्या हुआ, पर जब्त कर गई और एक फालतू सा सवाल कर डाला, कब जा रहे हो? इस शनिवार को, मंडे को ज्वाइन कर लूंगा। सामान पैक करके जा रहा हूं, मेरा कोई ठिकाना हो जाए तो खबर कर दूंगा, तुम बुक कर देना। महीने भर बाद उसका पता ठिकाना आया। मन तो हो रहा था कि खुद सामान लेकर जाऊं, उसका घर जमा दूं, पर फिर अपने को रोक लिया। सामान के साथ दो लाइन की चिट्ठी भेज दी, सामान पहुंच जाए तो खबर कर देना, चिंता रहेगी। पहुंच की सूचना स्वरूप एक पत्र आया। पत्र क्या था? धन्यवाद ज्ञापन था। लिखा था, मम्मा आपने अपने कर्तव्य में कभी कोताही नहीं की, विश्वास कीजिए मैं भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा, जब भी जरूरत हो खबर कर देना। उसने लिखा जरूर है, पर मन में वह भी जानता होगा कि मम्मा कभी खबर नहीं करेगी। मेरा गंतव्य आ गया था। सुबह के 5 बज रहे थे। अरविंद दंपति ने जता दिया था कि हमें जगा दीजिएगा, पर मैं बहुत पहले ही अपना सामान लेकर लॉबी में आ गई। इस परिचय को मुझे यही तिलांजलि देनी थी। मैंने मन ही मन उनसे क्षमा मांग ली, इसलिए भी कि मैंने उनसे झूठ बोला था। वैसे वह एकदम झूठ भी नहीं था। जिस पति का होना ना होने के बराबर हो, उसे स्वर्गवासी कह देने में क्या हर्ज है। और रही बेटे की बात, तो मेरे लिए बेंगलोर भी यूएसए हो गया है। पता नहीं वहां का वीजा मुझे कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं, कौन जाने। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी तहादे नजर एक बयाबा सा क्यों है। इस कहानी का दूसरा व अंतिम भाग। जिसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।